संतप्त मानस शांत हों, जिनके गुणों के गान में वे वर्धमान महान दिन बितरे हमारे ध्यान में। बंध वस्तु से नहीं अध्यवसान से है। तो आपको ऐसा लगता है कि बहुत कठिन विषय है, क्योंकि अध्यवसान शब्द से आप परिचित नहीं है। अध्यवसान माने मिथ्यात्व और राजद्वेष होता है। 25 कषायें और मिथ्यात्व, इन भावों का नाम है अध्यवसान। यदि ऐसा कहते हैं कि मिथ्या दर्शन ज्ञान चाहे से होता है तो आपकी समझ में आसानी से आ जाता है। लेकिन अध्यवसान शब्द है, ये समय सार परमागम का है। और ये जो पंक्ति बोली है यही मूल गाथा में आचार्य कुंज कुंज की गाथा में है। बंधाधिकार में इसकी चर्चा है कि बंध किस चीज से होता है, कर्मों का बंधन कैसे होता है, उसकी चर्चा बंधाधिकार में है। और बंधाधिकार का आरंभ करते हुए आचार्य देव ने 5 गाथाएं लिखी हैं, 10 गाथाएं लिखी हैं। उनमें एक मार्ग में एक उदाहरण दिया है कि एक धूल से भरे अखाड़े में एक पुरुष हथियारों से व्यायाम करता है। हथियार माने वो होते हैं ना, मुखदर वगैरह चलाते हैं। और व्यायाम करता है माने क्या, पुराने जमाने में आपने भीम की गदा तो सुनी होगी ना, जिसने दुर्योधन की जान तोड़ी थी। तो उसकी प्रैक्टिस करने के लिए केले के पेड़ हैं, ऐसी चीजों को लेकर उससे मार के तोड़ते हैं उसे। तो गंगा जैसा होता है कि केले तमाल आदि वृक्षों का के द्वारा वो उपघात करता है। एक आदमी उस अखाड़े में समझे ना, हथियारों के माध्यम से उस केले आदि वृक्षों को तोड़ता फोड़ता है और उसके शरीर में तेल लगा हुआ है। वहां धूल भरे स्थान में जब व्यायाम करता है तो उसके सारे शरीर में धूल चिबड़ जाती है। अब वहां शिष्य ने प्रश्न खड़ा किया कि उसे धूल क्यों चिबड़ी। उसने धूल भरे स्थान में खड़ा है इसलिए, हम तो यही मानते हैं ना, इसलिए हम चाहते हैं कि सारी दुनिया को धूल से रहित कर दिया जाए, करते हैं ना कोशिश। पुराने जमाने में एक राजा को ऐसी सनक हुई क्योंकि जरा उसके पैर में कांटा चुभ गया, तो उसने कहा क्या करें कि चमड़े को जो कांटा है वो तोड़ नहीं पाता है, तो सारी पृथ्वी को चमड़े से मर दो। क्या तो कितना कठिन काम था। उनके मिनिस्टर ने कहा हुजूर माफ करो, यदि एक बात मैं आप कहूं कि सारी पृथ्वी को चमड़े से मरने की अपेक्षा आप अपने पैर को चमड़े से मर लो ना, और उस दिन से जूते का जन्म हुआ। क्या कि सारी दुनिया को धूल से रहित कर दें, क्यों? तो वो कह रहे धूल से बंध होता है, जहां धूल हो वहां हमें धूल चेपती है, ये बात ही गलत है। उसे जो धूल चेती है वो धूल भरा स्थान होने से नहीं चेती। उस हथियारों से जो व्यायाम किया है वो व्यायाम करने से नहीं चेती। वो केले आदि के जो पेट तोड़फोड़ हुई है उसके कारण ही उसे धूल नहीं चेती। ये धन कुंड कुंड का है, तो चेती है तो क्या इसे चेती है, तो तेल लगाया था इसलिए चेती है। यदि वही व्यक्ति तेल लगाए नहीं होता तो कितना ही व्यायाम करता, कितना ही केले के तोड़ता, कितना ही धूल भरा स्थान होता, उसको धूल चेंटती नहीं, थोड़ी बहुत लगती तो ऐसा ऐसा करता तो नीचे गिर जाती। तो उन्होंने कहा धूल के बंध का कारण क्या है, तो उन्होंने कहा धूल के बंध का कारण है इसने माने तेल, तेल का मर्दन वो धूल के बंध का कारण है। کھیل کا مردن نہیں ہوتا اور باقی سب چیزیں ہوتی تو بھی دھول نہیں بنتی. تیل کا مردن ہوتا اور باقی چیزوں میں کوئی چیز نہیں ہوتی کداچ تو بھی اس کے دھول مٹی اس کے شریر کو چہکتی. اس لیے بند کا کارن اس کو جو رج بند اس کے شبد کیا پڑا رج بند دھول چبٹنے کا کارن تیل کی اسنگھتا ہے. ایسے یہ جیو کرموں سے بھرے سنسار میں رہتا ہے. ایک بھی جگہ لوکاکاش میں ایسی نہیں ہے جہاں کارمان برگنائیں سسا سس نہ بھری ہوں. آپ جانتے ہیں کہ جہاں آپ بیٹھے وہاں بھی کارمان برگنائیں ہیں. جب آپ راگ دیش مجھے کرتے ہیں تو یہ کارمان برگنائیں کرم روپ پرنمت ہو جاتی ہیں اور آتما کے ساتھ ان کا ایک چھیتر آپ کا سمبند ہو جاتا ہے. اس کا نام بند ہے. تو تو تھسا تھس بھری ہوئی ہے. اور من بچن کائے کی چنچلتا ہوتی ہے, لوگ کا پرشند ہوتا ہے تو بے دھول کی جو برگنائیں ہیں نا ان کے نمت سے وہ ہمارے سمپرک میں آتی ہیں اتوا سروپ پرنمت ہوتی ہیں. چلنے نا من بچن کائے کی چنچلتا سے. پھر کہتے ہیں کہ جیووں کا گھات اپگھات بھی ہوتا ہے. جیو بھی سزا سے بھرے ہوئے ہیں لوگ میں. آپ سانس لیتے ہو تو سانس سے بھی بہت سے جیو مر جاتے ہیں. جلے جنتو تھلے جنتو کون سی جگہ ایسی ہو جہاں جنتو نہیں ہے اور ہم کہاں بچ سکتے ہیں جیووں سے. کیوں تو کہتے جیووں کی ہنسا ہوتی ہے تو اس سے بند ہوتا ہے کیا؟ تو اس میں لکھا کہ نہیں, یہ سب چیزوں سے بند نہیں ہوتا اور بند ایک ماتر ادوسان سے ہوتا ہے. ادوسان مانے مچھاپ اور راگ دیس مانے پچیس کسان ان سے بند ہوتا ہے. دیکھو بنارسی داس جی نے ایک چھند میں اس سارے دس گاتھاؤں کے بھاو کو بہت ہی مارمک روپ میں پرستت کیا ہے. مجھے یاد ہے ایک دفعہ رکھنے میں نے یہاں اس بات کو سنایا تھا. کارمان برگنا سو جگ میں نہ بندھے جیو, بندھے نہ کداپی من بچے کائے یوگ سو. چیتن اچیتن کی ہنسا سو نہ بندھے جیو, بندھے نہ ہی پنچ اندرین کے بھوگ سو. کرم سو آبند سدھ یوگ سو آبند جن, ہنسا سو آبند سادھو گیاتا بسے بھوگ سو. اتیاد کے وستو کے میلاپ سونا بندھ جیو. کیا کہتے سنو کیسے بندھا ہے بعد میں کن سے نہیں بندھا ہے پہلے ہی نکی کہ لو. کیا کارمان برگنا, کارمان برگنا مطلب اس نے پرگل کی ایک ایسی برگنا ہوتی ہے جس سے کرم بنتے ہیں. یہ سب نکی ہے کہ کرم بننے والا مٹیریل الگ ہے, شریر بنانے والا مٹیریل الگ ہے, تیز شریر بنانے والا مٹیریل الگ ہے, یہ بھاشا نکلتی ہے اس والا مٹیریل الگ ہے. یہ سب ہیں پرگل, شبد نکلتے ہیں بھاشا برگنا اس میں نمت ہے. یہ شریر ہے اس میں آہار برگنا نمت ہے. تو ہمارا من ہے اس میں منو بگنا نمت ہے. ہمیں شریر میں تیز ہے اس میں تیزس بگنا نمت ہے. اور کرم ہے نا آٹھ پرکار کا جو بندے آتما سے اس میں کارمان بگنا. یہ پانچ پدگل کی برگنائیں جیو کے ساتھ سمبند رکھتی ہیں. ویسے پدگل تیئیس پرکار کا ہوتا ہے, اس میں پانچ کا آتما کے ساتھ سمبند ہوتا ہے. تو پانچ کا بند آتما کے ساتھ کیسے ہوتا ہے؟ تو کہتے کارمان بگنا کے ہونے کے کارن بند ہوتا. تو جہاں سدھ بھگوان رہتے ہیں نا سدھ شلا میں, وہاں بھی انت جیو موجود ہیں اور انت کرم موجود ہیں. ایک ہی آکاش کے پردیش میں دونوں رہتے ہیں. تو بے کرم ان سے چٹ جاتے انہیں نہیں لے, انہیں بند نہیں ہوتا. یعنی کرم کی وجہ سے بند ہوتا ہوتا دھول ہے, اس لیے ہمیں دھول چبڑتی ہے. تو جہاں جہاں دھول ہے ہر ایک کو چبڑنی چاہیے, ان سدھ بھگوان کو کیوں نہیں چبڑتی ہے؟ एक बात आपने सुनी है, जहाँ शुद्ध भगवान रहते हैं वो तो बहुत बढ़िया जगह होगी ना, वहां निगोदिया जी भी रहते हैं उसी जगह में। बंबई में करोड़पति लोग रहते हैं ना, एक जगह की बात बनती है, एक आदमी ने पूछा कि एक बताओ प्रश्न का उत्तर। मैंने कहा समय सार का पूछेगा। तो उसने क्या कहा कि बंबई में दादर तक मच्छर नहीं है और दादर के बाद मच्छर है, इसका क्या कारण है? बोलो अगले साल सब्जेक्ट मदरस देना। क्या मैंने कहा कि इसमें क्या है, यहाँ से दादर तक बहुत महंगा है इसलिए मच्छर एफोर्ड नहीं कर सकते। इसमें क्या है समझ? तो मेरे कहते कार सिद्ध सिला में भी निगोदिया जी रहते हैं और वे आठों कर्मों से बंधे हैं और वहां जो कर्म है उन्हें बंधते रहते हैं और उखड़ते रहते हैं, तो वहीं बैठे बैठे उन्हें बंधते रहते हैं। क्यों? इसी बंबई में इसी जगह इसी आप लोग भी रहते हैं बहुत आराम से एयर कंडीशन मकानों में, और जो सड़क पे रहने वाले भी रहते हैं कि नहीं रहते हैं? और आप कहते हैं एकदम ठंडा ठंडा, तो जितना एयर कंडीशन में अंदर ठंडक करती है ना वो मशीन उतनी ही ज्यादा बाहर गर्मी फेंकती है। क्यों? तो आपके लिए तो एयर कंडीशन और बाकी सड़क पे रहने वालों के लिए क्यों हीटर हो गया, वो और ज्यादा गर्मी और ज्यादा गर्मी। तो कहते हैं कर्मों से आत्मा नहीं बंधा है। पहली पंक्ति क्या है? कारमान बरगनासों जग में ना बंधे जीव, क्योंकि बंधते होते तो कर्म सो अबंध सिद्ध, सिद्ध भगवानों को बंद होना चाहिए था, नहीं होता है। बहुत लोग क्या कहते हैं कि मनोवचन काय की चंचलता से कर्म बनते हैं, इसलिए योगों का निरोध करो। जी योगा आ गया ना आजकल, शरीर को काबू में रखो, मन को भी काबू में रखो, वचन को भी काबू में रखो, बिल्कुल ऐसे करके बैठे रहो बेदन नहीं हिले, इसको योगा बोलते हैं। तुमने भाई तुमने किया कभी? अरे ये क्या है, शरीर को रोक सकता है तू? शरीर का परिवृद्ध है, मैंने पुद्गल की क्रिया का कर्ता बने तू? तो मनोवचन काय को आत्मा करता ही नहीं है, रोक ही नहीं सकता है। तू रोकता होगा तो सांस चलती है कि नहीं, तो पेट आगे पीछे होता कि नहीं होता, क्या रोक सकते हैं? रोकते ही नहीं। और सबसे ज्यादा योग चंचल किसके होते हैं मालूम आपको? अनंत भगवान के। तो नहीं सुना होगा कभी, समझे भाई? अनंत भगवान का योग सबसे ज्यादा चंचल होता है। आत्मा के प्रदेश हुआ कपना अनंत भगवान के सबसे ज्यादा होता है, क्योंकि अयोग तो अवस्था आई नहीं और अनंत वीर प्रकट हो गया, इसे ताकत की कमी से भी हम कम कांपते हैं, है ना? आदमी रोते हैं ना तकलीफ में, लेकिन बेहोश हो जाए, ज्यादा तकलीफ हो तो रोना बंद हो जाता है। शक्ति के शक्ति नहीं तो कैसे रोए, है ना? उनके शक्ति तो अनंत है, कोई रोकने का कारण तो है नहीं। तो सबसे ज्यादा चंचल योग अरहंत भगवान के होता है और उन्हें कर्मों का बंधन नहीं होता। तो इसका मतलब है योग से कर्म का बंधन नहीं होता। कारमान बरगणसो जग में ना बंधे जीव, बंधे न कदापि मने बच्चे काए योग सो, कर्म सो अबंध सिद्ध, योग सो अबंध जिन जिन माने अरहंत भगवान। अब तीसरा बहुत खतरनाक है, चेतन अचेतन की हिंसा सोना बंधे जीव, कि चेतन की हिंसा और अचेतन की हिंसा उससे जीव को कर्म बंध नहीं होता। ये नहीं ये कैसे स्वीकार कर सकते हैं, इनका अहिंसा परम धर्म है। हाँ, हमारा नारा है हेतु है। क्या यहाँ कह रहे चेतन अचेतन की हिंसा से ना बंधे जीव माने क्या? पहले तो यही झगड़ा है कि अचेतन की भी हिंसा होती है। क्यों? तो रूमाल की भी हिंसा होती है, चेतन अचेतन दोनों की हिंसा लिखी है ना। जब आपको किसी आदमी से बहुत गुस्सा आता है और उसकी फोटो आपके हाथ में हो तो आप फाड़ के फेंक देते हैं कि नहीं, तो पैरों के नीचे डाल के मसलते हैं कि नहीं मसलते हैं, वो अचेतन की हिंसा है भाई साहब। क्या चौराहे से लगी जो मूर्तियां हैं और उनके प्रति द्वेष के कारण लोग जाकर के गांधी जी की मूर्ति को तोड़ देते हैं, किसी की मूर्ति को तोड़ देते कि नहीं तोड़ते, कोई अम्बेडकर की वो तोड़ देता है। ये रचना घटना रोजाना होती रहती है, काय की तकलीफ है, ये अचेतन की हिंसा है। और चेतन की तो आप समझते ही मुझे प्राण से जीव को, तो इन दोनों हो गए और तो भी कर्म बंध नहीं होता। हम हिंसा करें और कर्म नहीं बंधे, ये ऐसा जैन धर्म है तो गजब हो गया। हमें नहीं सुनना ऐसा जैन धर्म, और तुम 25 वर्ष से अध्यात्म सभी सर्कल में सुन रहे हो और तुम्हें इतनी खबर नहीं है, तुम्हें सुना जाए अभी क्या करें। पहले ये व्याख्यान दिया है, मुझे याद है पक्का, बिल्कुल इसी भाषा में। क्या फिर कहते हैं सुनो, उदाहरण कह दिया, हिंसा सो अवंध साधु। एक मुनिराज है तो ईरिया समिति पूर्वक चलते हैं, चार हाथ जमीन देख के चलते हैं, हित मित्र प्रिय बोलते हैं, 32 अंतराल 46 दोष डालकर आहार लेते हैं, पिछी कमंडल भी रखते उठाते हैं ना तो पहले सफाई करते हैं कोई जीव ना मर जाए, एक घड़ी भी रखेंगे ना तो पहले इधर जगह की सफाई करेंगे ऐसी और फिर घड़ी रखेंगे। देखा कभी दिगंबर मुनि भी चल जाए, आना देखना, कहीं करीब 6-7 तो है दिगंबर मुनिराज, उनके सुबह से शाम तक रहना उनके पास, तो तुम्हें मालूम पड़े कैसी होती दिगंबर मुनि भी चल जाए। लेटरिन जाए ना लेटरिन, तो जगह जीव जंतु ना हो ऐसी जगह देखते हैं, क्यों कि चींटियां वहां जा रही हैं और तुमने वहां पेशाब कर दी तो उन्हें तो मानो गंगा जी में बाढ़ आ गई, ऐसा हो गया। इधर ही बह जाएंगी कि नहीं बह जाएंगी, निर्जन तु थान बिलोक मल मूत्र लेशम परिहरे, ये सब मैंने खकार थूक दिया ऐसा, और वहां किसी मक्खी के ऊपर गिरेगा बचेगी। इतनी अहिंसा का पालन मुनिराज करते हैं, फिर भी उनसे हिंसा नहीं होती हो जीवों की, ये संभव नहीं है। क्यों नहीं है कि चार हाथ जमीन देख के चलते हैं, चार हाथ जमीन देख के चलते हैं, तो चार हाथ जमीन देख के चलने का मतलब ये हुआ कि चार हाथ जितनी दूर पर जितने बड़े जीव हैं वो दिखाई देंगे, जीव तो इतने छोटे भी होते हैं कि चार हाथ से दिखाई नहीं देंगे। आप मेरे से कितने दूर होंगे, चार हाथ तो होंगे ना, पता ना कितने बजे घड़ी, तो देखो देखो ना घड़ी दिखते ना, समझे ना, तो चार हाथ दूर से जो जीव दिखाई ना दें, ये सूक्ष्म जीव तो उनके पैर के नीचे आके मरेंगे कि नहीं मरेंगे बोलो, भले ही जीव जंतुओं को देख करके और फिर लेटरिन बाथरूम जाएं, लेकिन उस वक्त तो वहां जीव जंतु नहीं होंगे और वे उनने जाना शुरू किया और कोई वहां से आके उसमें फंस जाएगा तो वे क्या करेंगे। तो कहते हैं उनसे उन जीवों की हिंसा होती है फिर भी उन्हें कर्मबंध नहीं होता है, शास्त्र कहते हैं। और हम ऊपर को मुंह करके चलते हैं, एक भी जीव आपके पैर के नीचे आके नहीं मरे, क्योंकि आप तो संगमरमर पे उसे चल रहे हैं, तो सफाई किए हुए पोंछा लगाए हुए कि मैं, तो भी आपको बंद होता है, क्योंकि आपको जीवों की सावधानी नहीं है हिंसा की। तो चेतन अचेतन की हिंसा हो फिर भी कर्म का बंद नहीं होता है मुनिराजों को, और न पांच इंद्रियों के विषय भोग से भी बंद नहीं होता। ये तो और ही गजब होती है, अब तो हमें बहुत बढ़िया छुट्टी मिल गई, बस खूब भोगो, अभी अभी क्या मिली छुट्टी, और आगे देखो ज्ञान बंद के भोग निद्रा ये भी है और उससे फिर निद्रा होगी, अरे वाह ऐसा अच्छा धर्म कहां मिलेगा। कहते हैं भरत चक्रवर्ती जैसे 96,000 पत्नियों के पति, लेकिन उनके भी मिथ्यात्व संबंधी भयंकर बंध नहीं होता, इकतालीस प्रकृतियां नरक गति, नरक गतानुकूल भी, तुरंज गति, तुरंज गतानुकूल भी, मिथ्या स्वनंतानंदी क्रोध मान माया लोग, ऐसी इकतालीस प्रकृतियों का बंध उनके नहीं होता। तो फिर पढ़ता हूं पंक्तियां देखो। कारवान बरगण सो जग में ना बंधे जीव, बंधे न कदापि मने बच्चे काए योग सो, चेतन अचेतन की हिंसा सो ना बंधे जीव, बंधे ना ही पंच इंद्रियन के भोग सो, कर्म सो अबंध जिन, कर्म सो अबंध सिद्ध, योग सो अबंध जिन, हिंसा सो अबंध साधु, ज्ञाता दिशा भोग सो, और इत्यादि के वस्तु के मिलाप सोना बंधे जीव। इतनी चीजों से जीव नहीं बनता है, तो बंधता तो है, तो क्यों बना? के बंधे एक रागादि अशुद्ध उपयोग सो, ये रागादि का जो अशुद्ध उपयोग है, ये अद्वसान भाव है, उनसे जीव बनता है। वस्तु से ना बंध, और बंध अद्वसान से, समझे ना, वस्तुओं से बंध, बाह्य पदार्थों से बंधन नहीं होता है, बंध तो अद्वसान भावों से होता है। देखो और सरल उदाहरण करने के आपको समझाता हूं, चिंता नहीं करना। एक आदमी ने यहां से गोली चलाई और सामने एक आदमी मर गया, और उसकी वजह से उसे एक किलो पाप लगा। घबराना नहीं, पाप किलो में नहीं लगता है, लेकिन अपन को समझने के लिए, उदाहरण के लिए मैं बात करता हूं। कितना पाप लगा? एक किलो पाप लगा। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि वो जीव मरा, उसका कितने ग्राम पाप? हजार ग्राम होते ना एक किलो में। हमने मारने का भाव किया, उसका कितना पाप? और हम पर को मार सकते हैं, बचा सकते हैं, ऐसा अभिप्राय है, ऐसी मान्यता है, तो उसका कितना पाप? तीन जगह उस पाप का बंटवारा हमें करना है। यदि आज की गवर्नमेंट से पूछो तो वो कहेगी कि 100% एक किलो पाप उसके मरने की वजह से लगा। क्यों कहेगी? क्योंकि वो मर गया, अब केस चलेगा तो फांसी पर चढ़ेगा वो, क्योंकि उसकी हत्या कर दी उसने। क्यों जी? वो गोली यहां ना लगकर यहां से निकल जाती और वो मरता नहीं तो उसे कितने साल की सजा होती? फांसी पर चढ़ता क्या आज के कानून के हिसाब से? खिलाफ उसके हत्या के केस में से फांसी पर चढ़ाओगे, ये तो जिंदा है। क्यों? बहुत पहले एक फिल्म आई थी, उसका नाम था कानून। वो हमारे बचपन की फिल्म थी, दिनेश भाई ने भी देखी होगी, मैंने भी देखी थी, अशोक कुमार की। उसमें बहुत मार्मिक प्रश्न था कि एक आदमी को इस बात के लिए सजा हुई आजीवन कारावास कि उसने किसी को मार दिया, हत्या कर दी। अब वो जब आए 20 वर्ष निकल गए, तब बाद में वो आदमी कहीं जिंदा निकल आया, जिसकी हत्या के आरोप में उसे सजा दी गई थी, ख्याल में है ना? तो वहां पर एक प्रश्न खड़ा किया कि अभी इसका तो अपराध सिद्ध हो गया, जिसने इसको मारा नहीं, अब 20 साल उसको जेल में रखा गया, क्या कोई आदमी उसके वो 20 साल दे सकता है? उसकी उस जवानी को लौटा सकता है? उसकी पत्नी ने जो दुख भोगे हैं उसे बचा सकता है? उसके अनाथ बच्चों की जो जिंदगी खराब हुई उसके लौटा सकता है? ख्याल नहीं ना? और यदि आज उसे फांसी पर चढ़ा दिया गया होता तो वो अभी तो जेल से छोड़ दिया, वो भी संभव? वो ये बताना चाहते कानून कितना अंधा है। वो तो ये बताया, मैं ये कहता हूं कि वो आदमी बच गया, इसने गोली चलाई थी और वो आदमी को नहीं लगी, वो भाग गया, तो हमने समझ लिया कि मर गया। लेकिन यदि वो मर भी गया होता, नहीं मरता, तो उस कानून के हिसाब से उसे सजा नहीं मिलती। ठीक है? इसका मतलब ये कानून मानता है कि सिर्फ उसके मरने की ही पूरी सजा है, पूरा बंध जो हुआ है, बंधन में पड़ा है वो सिर्फ सामने वाले जीव के मरने की वजह से हुआ है। अब जैन धर्म क्या कहता है मालूम आपको, कि उसके मरने से तो जीरो भी बंद नहीं है, क्रॉस बंद का क्रॉस, चेतन अचेतन की हिंसा सोना बंद है जी, आ गया ना क्या? और उसका जवाब क्या है कि यदि गोली बगल से निकल जाती और फिर वो नहीं मरता तो जैन धर्म के हिसाब से, आपके हिसाब से उसे कर्म का बंध होता कि नहीं, होना चाहिए कि नहीं? क्योंकि उसने तो मारने का भाव कर लिया, उसे तो बंध यहां होता है, बंध तो हो ही जाएगा ना, मरना और जीना तो उसके भाग्य के अधीन है। तो जैन धर्म कहता है 100% वो मारने के ये परिणाम का बंध का कारण है, मरना नहीं। और दुनिया कहती है कि मरना ही बंध का कारण है, नहीं मरता तो कोई सजा नहीं, मर गया तो सजा। तो जैन धर्म तो दुनिया का की मान्यता से एकदम उल्टा है भाई साहब। हो क्यों नहीं, दुनिया राज में धर्म मानती है, ये जीतरागी धर्म है। दुनिया पर को कर्ता मानती है ये अपने को, और ये कहता है एक दूसरे का कर्ता नहीं है, उल्टा है ना। अब जरा आगे बढ़ो कि वो जो 1 किलो पाप लगा था तो वो मारने की मरने की वजह से तो बिल्कुल नहीं लगा, 1 का हिस्सा तो गया क्या? हमारे 3 बेटे थे, हमारी संपत्ति 3 बेटों में बढ़ना चाहिए थी, मुकुंद भाई 1 अमेरिका चले गए और अमेरिका में जाकर के अरबपति हो गया। वो तो कहता पापा मुझे कुछ नहीं चाहिए, बाकी 3 में बांट दो। क्या होता है ना, वो कहता है कि उससे बिल्कुल भी बंद नहीं, अब बाकी 2 में बांटो। बांटो कौन कौन से 2 रह गए मुकुंद भाई? 1 तो मारने का भाव, और 1 मैं मार सकता हूं कि बचा सकता हूं ऐसा भाव, 1 मारने और बचाने का भाव, और 1 मैं मार सकता हूं और बचा सकता हूं ऐसी मान्यता अभिप्राय। तो 101,000 ग्राम में 1 ग्राम पाप तो मारने के भाव का है और 999 ग्राम मारने के अभिप्राय का है, मारने का भाव भी नहीं किया, लेकिन मैं मार सकता हूं, मैं बता सकता हूं, तुम समझते चाहो, यदि मैंने तुम्हें आसमान में पहुंचा दिया तुम्हें जमीन में भी मिला सकता हूं, पुनर्मुस्को भाव क्यों कहते ना लोग, इसका इतना भाव है कि नहीं साहब ये तो अन्याय है, मान्यता कुछ हुआ ही नहीं, पर मैं तो कुछ हुआ ही नहीं, अपने परिणाम भी नहीं बिगड़े, सिर्फ अंदर में ऐसा मानता हूं कि मैं जगत का कर्ता धरता हूं, मैं जीवों को मार सकता हूं बचा सकता हूं, ऐसा अभिप्राय अंदर में है तो उसका इतना 999 ग्राम हमें नहीं स्वीकार। अरे हमने तो बहुत कम बताया है, शास्त्र में तो ये लिखा है कि उसका अनंत गुणा और उसका अनंतमा भाग, वो अनंत तुम्हारी समझ में नहीं आता इसलिए हमने 1000 गुणा कर दिया, ये लिखा है, कुछ नहीं है वो, मारने के परिणाम में कोई कीमत दम नहीं है, वो मारने का अभिप्राय। और अभी तो और क्या लिखा है, अकेले मारने के भाव का अभिप्राय का नहीं, बचाने के अभिप्राय का भी अनंत गुणा बंध। देखो एक खतरनाक बात कहता है दिनेश भाई जी, मारने का भाव होवे तो पाप बंद होगा और बचाने का भाव होवे तो पुण्य बंद होगा दूसरे को, लेकिन मारने का और बचाने का अभिप्राय होगा तो दोनों में महापाप बंद होगा। समझ आए कि नहीं, स्पष्ट बात क्या नहीं क्यों समझना है, थोड़ी बारीक बात है कि पुण्य पाप का फर्क तो उसमें पड़ता है जो हमारे भाव हुआ मारने का बचाने का, अभिप्राय तो दोनों ही एक से मिथ्या है, मार सकते नहीं और मारने का भाव कर रहे, और बचा सकते नहीं और बचाने का भाव कर रहे, तो इनमें तो मिथ्यापना दोनों में एक सा है ना, तो पाप बंध में फर्क क्यों पड़ेगा, پتا نہیں سمجھ میں آئی بات کہ نہیں, کہ بچانے کا بھی پرا ہے, اس کا بھی اتنے پنیہ بند نہیں, پاپ بند, ارے پاپ نہیں پاپ کا باپ بند, ارے پاپ کا باپ نہیں باپ کا باپ, کیونکہ لوگ پاپ کا باپ بکھانا اور میں چھاتا تو دادا ہے, دادا مانے میں تم نہیں, ہم تم بھی دادا بن گئے نا, کیا کرے تو بمبئی والے دادا بھی نہیں. دیکھو اس میں ایک قریب 20 گاتھائیں 16 گاتھائیں ہیں اسی بند ادھکار میں, ان میں 2-4 گاتھائیں میں سناتا ہوں آپ کو, اس کا ہندی پدیان واد سناتا ہوں آپ کی سمجھ میں آئیں گی. نج آیو سے جیوت رہے یہ بات جن بر نے کہی, تم مار کیسے سکو گے جب آیو ہر سکتے نہیں, نج آیو سے جیوت رہے یہ بات جن بر نے کہی, تم بچا کیسے سکو گے جب آیو دے سکتے نہیں. تم کسی کو آیو کرم دے سکتے ہیں؟ ایسا انجیکشن بنا ہے کہ کسی کو لگا دیں تو آیو کرم بڑھ جائے, کیا آیو کرم کا آپ کا سن ہو جائے, ایسا انجیکشن بنا ہے کہ. تو جب تم کسی کو آیو کرم دے نہیں سکتے, آیو کرم بتا نہیں سکتے, شاستر کہتا ہے آیو کرم کے 600 جی مرتا ہے اور آیو کرم کی وجہ سے زندہ رہتا ہے, تو تم کیوں ابھیمان کرتے ہو؟ بچاپن دونوں میں ایک سا ہے, چاہے بچانے کا بھاو ہو اور چاہے مارنے کا بھاو ہو, کہ نہیں ہمارے گلے بات نہیں کر سکتی. کیوں؟ بچانے کا بھاو, دیا کا بھاو کتنی بڑھیا چیز ہے, اور گجرات میں تو جیو دیا کا اتنا مہتو ہے کہ یہ بات کہنا کانجی سوامی نے کیسے کہی یہی سمجھ میں نہیں آتی گجرات میں بیٹھ کے. کتنا مہتو ہے یہاں, اور یہاں کیا کہہ رہے ہیں تو سمجھنا, کہ وہ کہہ رہے ہیں بچانے کا بھاو اور مارنے کا مانتا دونوں ایک سی ہے, کیونکہ تم کر نہیں سکتے کچھ اس میں. اب میں تھوڑا ادھارن دے کے بتاؤں گا تو آپ کے گلے اتر جائے گی بات, ایک مارنے کا بھاو اور ایک بچانے کا بھاو. سنو, عراق نے کویت پر آکرمن کیا, پرانی بات آپ کو ادھارن نہیں چلانا ہے نا, معلوم ہے نا آپ کو, اور مار مار کے کویت والوں کو بھگا دیا, سعودی عرب میں چلے گئے یہ سب, اور وہ قبضہ کر لیا کویت پہ, ہے نا. اب امریکہ آیا اور اس نے کویت والوں سے کہا کہ تم کہو تو ہم ان کو مار مار کے بھگا دیں, ایران میں بھیج دیں تو تمہارے لیے کویت دلا دیں. ارے صاحب اتنا بڑھیا آپ کام کریں گے, خیر ضرور کرو, ہم آپ کے ہاتھ جوڑتے ہیں, بچانے آئے. انہوں نے عراقیوں کو مار مار کے واپس عراق میں بھیج دیا اور کویتیوں کو کویت سونپ دیا, کتنا بڑھیا کام ہوا. اب ذرا آگے سنو, تو انہوں نے کہا کہ اب کام ہو گیا آپ پدھارو. کیا تھا؟ نہیں نہیں یہ تمہارا بناش ہو گیا, اس کا ہمیں نرمان کرنا ہے, اسکول اسکول ٹوٹ گئے, ایئرپورٹ ٹوٹ گیا, وہ دوبارہ بنائیں گے. ہم نے وہ پرانی ایئرپورٹ پہ بھی گیا تھا اور پھر نئے والے پہ بھی دیکھ جا کے آیا, دونوں دیکھے میں نے, تو انہیں نرمان کیا. آپ پدھارو کہ ابھی تو انہیں ہم تھے تو تمہیں بچا لیا, لیکن ہم جائیں گے تو یہ عراق پھر تم پہ مار کے قبضہ کر کے بھگا دے گا اور اس پہ قبضہ کر لے گا, اس لیے اب تمہاری رکشا کرنے کے لیے ہم یہیں رہیں گے. بولو, مارنے والا اچھا کہ بچانے والا اچھا, سمجھ میں آ رہا؟ پرادین تو دونوں ہی نہیں کیا. اب میں اور خطرناک بات کہتا ہوں, میں کہتا ہوں دیکھو چھاتی پہ ہاتھ رکھ کے سننا, اور کسی کو کوئی اٹیک مٹیک ہو جائے تو بھیا جلدی سے اسے اسپتال لے جانا, اور خطرناک بات ہے. کیا 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 کہتا ہوں سنو, وہ عراق نے کویت کو ہڑپ لیا تھا سننا, اور اس کے قبضے میں ہی کویت رہ جاتا تو کیا ہوگا؟ وہ ایراد کا حصہ ہو جاتا ہے, ایک پرانت ہو جاتا, اور پرانت ہو جانے سے ایراد کو آزادی ملتی تو اسے بھی آزادی مل جاتی, اسے بھی ووٹ دینے کا ادھیکار مل جاتا. سمجھ گیا نا؟ اگر پاکستان ہندوستان میں شامل ہو جائے تو کیا جائے گا پاکستان کا؟ اسے بھی ووٹ دینے کا ادھیکار. کلام آج بن سکتے ہیں یدی یہاں کے راشٹرپتی, تو کوئی پاکستان والا نہیں بن سکتا پھر, وہ تو بھارت کا انگ ہو جائے گا نا. تو وہ آزاد ہوگا تو پڑا بھی بری سمجھ نہیں. پاکستان ہندوستان میں شامل ہو جائے, بنگلہ دیش ہندوستان میں شامل ہو جائے, تو وہ پرادھین ہوگا کہ سوادھین؟ یعنی وہ پرادھین ہوتا تو راجستھان بھی پرادھین ہے, مہاراشٹر بھی پرادھین ہے, کیونکہ فائر گورنمنٹ کے ہاتھ میں ہے. ارے وہ تو ہمارا حصہ بن جاتا, ہر ناگرک وہاں کا سوادھین ہو جاتا کہ نہیں, اسے چناؤ لڑنے کا ادھیکار ہوتا کہ نہیں. تو عراق کے ساتھ ملنے میں تو اس کو سوادھینتا ملتی, گھبرانا نہیں. اور امریکہ کے ساتھ غلامی انت کال کو, کیونکہ وہ پڑوسی نہیں ہے, ہماری جاتی کے لوگ نہیں رہتے ہیں, ہماری نسل کے لوگ نہیں رہتے ہیں, ہمارے رشتے دار نہیں رہتے ہیں, وہ نسل الگ ہے, وہ دور ہے ہم سے ہزاروں میل دور. پاکستان امریکہ کے قبضہ میں چلا جائے تو غلام رہے گا, اور ہندوستان کے ساتھ آ جائے تو آزاد ہوگا. سمجھنے گھبرانا نہیں, سدھانت سمجھنے آیا کہ نہیں؟ کیا ہوتا عراق کویت کا؟ عراق کا حصہ بن جاتا, پھر عراق کی آزادی کی لڑائی ہوتی, پھر عراق آزاد ہو جاتا, تو کویتی بھی وہی پوزیشن ہوتی نا جو عراق کے دوسرے حصے کی تھی. اب ہم یہی رہیں گے تمہاری رکشا کرنے کے لیے. سننا ذرا اور آگے کی بات, لیکن یہ جو ہمارے سینک ہیں نا, یہ تمہاری رکشا کے لیے یہاں رہیں گے نا, تو ان کی تنخواہ تمہیں دینا پڑے گی, ڈال دوں گی. سمجھنا ہے؟ کیوں کہ تمہاری رکشا کے لیے رہیں گے. تو کہا کہ بھئی ہماری رکشا کے لیے رہیں گے اور ہم ان کی تنخواہ چکائیں گے, تو جو ہماری آجیا مانیں گے نا, سینک تو ہمارے ہیں, تمہاری آجیا کیسے مانیں گے؟ تم ادھم کرو گے تو ان کو آڈر دیں گے, انہیں دباؤ تمہیں دبائیں گے. ہماری آجیا نہیں مانیں گے تو تنخواہ ان کی ہمیں چکانا. سمجھ گئے نا کہ بھیا ہمارے پاس تو اتنے پیسہ ہے ہی نہیں, ہم کہاں سے چکائیں گے؟ کہ تم چنتا مت کرو, ہم تمہارا تیل نکال لیں گے. تیل نکالنے کا تو آپ سمجھ رہے ہوں گے ہندی میں تیز ہے. کیوں بولا بولا؟ ہندوستان کو امریکہ نے آج تک ایسا کیوں نہیں بچایا؟ کیا کرتا؟ اس کے پاس تیل ہی نہیں تھا. یہاں جیسے سینکوں کو روز چھوڑ دیتا تو ان کی تنخواہ یہاں کا دیتے کہاں سے؟ پاکستان کو دیتا کہاں سے؟ پاکستان وہاں تو اربوں ڈالر دینے پڑے نا, تو وہاں آج اپنی سینا نہیں چھوڑی. افغانستان میں اپنی سینا نہیں چھوڑی, کیونکہ وہاں سے کیا ملنے والا ہے؟ لیکن کویت کی رکشا آج تک کر رہے ہیں. ہم تو اس لیے سرکشت ہیں کیونکہ ہمارے پاس تیل نہیں ہے. اب سمجھ لو کہ مارنے والا زیادہ خطرناک کہ بچانے والا زیادہ خطرناک؟ مجھے بتا, مارنے والا عراق, بچانے والا امریکہ, خطرناک کون ہے؟ سارا تیل نکال کے بولے جائیں موٹر گاڑیاں ان کی دوڑیں, کیوں مال ہمارا سب سمپتی نکال کے لے جائیں؟ تیل کی کمی امریکہ میں بھی نہیں ہے, لیکن پہلے تمہارا ختم کر لیں پھر اپنے کو ہاتھ لگائیں گے. اپنے کو ختم کیوں کریں ابھی اپنا؟ سمجھ میں آئے نا؟ تو مارنے والے سے رکشا کرنے والے زیادہ خطرناک ہیں, کیونکہ غلام دونوں بناتے ہیں, مارنے والے بھی غلام بناتے ہیں اور بچانے والے بھی غلام بناتے ہیں. ارے مارنے والے ماریں گے تو ان کی غلامی سے تو بچ جائیں گے, اگلے بھم میں چلے جائیں گے, جو ہوگا سب دیکھا جائے گا. تو یہ بچانے والے تو بننے بھی نہیں دیتے. بولو, مارنے کا بھاو اور بچانے کا بھاو دونوں ایک سے خطرناک ہیں کہ نہیں؟ مارنے کا ابھپرائے اور بچانے کا ابھپرائے ان دونوں سے ایک خطرناک ہے کہ نہیں؟ اصلی ادبستان اسی کا نام ہے. کون؟ جو ابھپرائے میں پردرب کو مارنے بچانے کا بھاگ ہے اس کو بولتے ادبستان مکھا تو نامک, और उसके साथ जो क्रोधमान माया लोग हैं उन्हें भी बोलते हैं अध्यवधान, और उनके बिना जो क्रोधमान माया लोग हैं उन्हें जरा थोड़ा सा कंसेशन दिया है। वो ज्ञानी के बोलते ना तो अनंत संसार के बंध का कारण नहीं है, तो सुमय साहब का बंध का कारण है ही नहीं, लेकिन प्रत संसार कहता है नहीं नहीं जितना राग है उतना तो बंध हो गई, कथनचित बंध के कारण है और कथनचित बंध के कारण नहीं है, अंदाजा लगा कुछ, अध्यवसान बंध के कारण है और वस्तु से बंध नहीं होता। क्या करें, तुमने जो रोटी खाई, दाल खाई, आलू खाया, जमीकंद खाया, तो जो पाप लगा वो आलू खाने का नहीं लगा, खाने के भाव का लगा, और खाने के भाव का नहीं खाने के अभिप्राय का लगा, एक लगा, इसका नाम है वस्तु से ना बंध हो बंध अध्यवसान से।